ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधापदकमलं श्रीगुरन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणालिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तु ते नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये रम्भारसाम्बोधे आदाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय गावरायते आविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पदे गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रष्ट्रालभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपिनाथः श्रियेस्तु नः तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿ ಪಿಯೂಷ ಸರ್ವವೈದಿಕ ಸತ್ಫಲ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತರತ್ನಾಢ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕೈಕ ದೃಕ್ಪ್ರದ ಸರ್ವಭಾಗವತ ಪ್ರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರಭು ಕಲಿದ್ವಾಂತೋದಿತಾದಿತ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿವರ್ತಿತ ಪರಮಾನಂದ ಪಾಠಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮವರ್ಷಕ್ಷರಾಯತೆ ಸರ್ವಂದಾ ಸೇವ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮದೇಕಬಂಧೋ ಮತ್ಸಂಗಿನ್ ಮದ್ಗುರು ಮನ್ಮಹಾದನ ಮನ್ಯಸ್ತಾರಕ ಮದ್ಭಾಗ್ಯ ಮದಾನಂದ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಸಾಧು ಸಾಧು ತಾದಾಯಿನ್ ಅತಿ ನೀಚೋಚ ತಾರಕ ಅನಾಂಚ ಕದಾಚಿನ್ ಮಾಂ ಪ್ರೇಮ್ನಾರಿತ್ಕಂಠಯೋ ಸ್ಪೃಹ ಪಾದೋ ಯದಿಯೋ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೌ ತೃತೀಯ ತುರ್ಯೋ ಕಥಿತೋ ಯದೂರು ನಾಭಿಸ್ತತಾ ಪಂಚಮಯೇ ವಷಷ್ಠೋ ಭುಜಾಂತರಂ ದೌರ್ಯುಗಲಂ ತತಾನ್ಯೋ ಕಂಠಸ್ತು ರಾಜನ್ ನವಮೋ ಯದಿಯೋ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ದಶಮಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲಂ ಏಕಾದಶೋ ಯಶ್ಚಲಲಾಟಪಟ್ಟಂ ಶಿರೋಪಿ ಯದ್ವಾದಶ ಏವ ಭಾತಿ ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಕರುಣಾನಿಧಾನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ಸುಹಿತಾವತಾರಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುಂ ಭಜಾಮಹೇ ಭಾಗವತ ಸ್ವರೂಪಂ. ಪಿಛಲೆ ಕುಛ ದಿನೋ ಸೇ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ, ಇಸಿ ಕೋ ರಖಿಯೇಗಾ. ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೇ ಹುವೇ ಸಾತ್ ದಿನ ಮೇ ಪಹಲಾ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಮಹಿಮಾ, ದೂಸರಾ ಭಾಗವತ್ ಇತ್ನಾ ಮಹಾನ್ ಕ್ಯೋ ಬನಾ, ತೀಸರಾ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಪ್ರಭಾವ ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೇ ಹುವೇ, ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಆತ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಹೈ, ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾ ಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ, ಐಸಾ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೇ ಹುವೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ರಸ್ ಕಾ ಪಾನ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಥೋಡಾ ಸಾ ಏಕ್ ಝಲಕ್ ಕೋ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ನಹಿ ಹೋಗಾ ತೋ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ಭಿ ಜಾನ್ ಕೆ ಕ್ಯಾ ಫಾಯ್ದಾ. ಜೈಸೆ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ಖೂಬ್ ಆಪ್ನೆ ಸುನಾ, ಲೇಕಿನ್ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಕೋ ಚಕಾ ನೀ ತೋ ಝಲಕ್ ಠೀಕ್ ನಹಿ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಜ್ ಥೋಡಾ ಸಾ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ದಸವಾ ಸ್ಕಂದ ಕಾ ದೋ ಲೀಲಾ ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮೇ, ಜಿಸ್ಮೇ ಶ್ರವಣ ಸೆ ಪ್ರೇಮ. ಪ್ರಾಯ ಲೋಕ ಸೋಚತೆ ಕಿ ಮಂದಿರ ಜಾನಾ ಚಾಹಿ ದರ್ಶನ ಕೆ ಲಿಯೇ, ಲೇಕಿನ್ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಧಾರಾ ಮೇ ಮಂದಿರ ಜಾನಾ ಚಾಹಿ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ. ಮಂದಿರ ಜೋ ಹೈ ವೋ ಏಕ ಐಸಾ ಜಗಾ ಹೈ ಜಹಾ ಹಮ್ ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಕೋ ಶ್ರವಣ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ಜಿತನಾ ಉಸ್ ಭಗವತ್ ಕಥಾ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರೆಂಗೆ ಉತ್ತನಾ ಪ್ರೇಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋಗಾ. ಜಿತನಾ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರೆಂಗೆ ಉತ್ತನಾ ಹೃದಯ ಮೇ ಪ್ರೇಮ, ಜಿತನಾ ಪ್ರೇಮ ಉತ್ತನಾ ಅಚ್ಛಾ ದರ್ಶನ. ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಮೇ ಇನ್ ಜಡ ಆಂಕೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಕ್ಷಮತಾ ನೀ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಕಿ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋತೆ ಭಗವಾನ್ ಹಮಾರಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೇ ಹೈ. ಗೌಡಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಾವ ಯೇ ಹೈ, ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಆಪ್ಕಾ ದಾಸ್ ಹೂ, ಇಸ್ ದಾಸ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕೀಜಿಯೆ. ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಹೈ ಕ್ಷಮತಾ ಕಹಾಂ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಕಿ. ಕೇವಲ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪ್ರೇಮ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾಂ ಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಾ, ಭಾಗವತ್ ಕೇ ಓರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಭಾಗವತ್ ಶ್ರವಣ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ದರ್ಶನ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೇ ಕಹಾ ಯು ಸೀ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಕಾನೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ದರ್ಶನ, ಕಾನೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕೆ ದ್ವಾರಾ. ಅಭಿ ಆಜ್ ಆಪ್ ದರ್ಶನ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನ. ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಮತ್ಲಬ್ ಸೋನೆ ಕಾ ಸಿಂಹಾಸನ್. ವೈಸೆ ದೇಖಾ ಜಾ ಶಿಲಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಅಪ್ನೆ ತತ್ವ ಸಂದರ್ಭ ಕಹತೆ ಹೈ ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕುಛ ಹೈ ನಹಿ, ಆಲ್ಟರ್ ಜಹಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಹೈ ಉಸೀ ಕೋ ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಹಾ ಗಯಾ, ಉಸೀ ಕೋ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಔರ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮೇ ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ ಉದರಿ ಭಾಗವತ್ ರಖನಾ ಹೈ. ಕ್ಯೋ ಜಿಸ್ ವಿಗ್ರಹ ಕೋ ಪ್ರಾಣ, ಜಿಸ್ ವಿಗ್ರಹ ಮೇ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೀ ಗಯಿ ಹೈ. ಕಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೀ ಗಯಿ ಹೈ, एक शुद्ध भक्त अपने प्रेम के द्वारा जब भगवान को आवाहन करते हैं उधर आके बैठ जाते हैं वास्तविकता में। और एक जगह वर्णन आता है, भगवान का सिंहासन क्या है? हमारा हृदय। और हृदय में भगवान कब विराजते हैं? जब हम भागवत को श्रवण करेंगे। कल आपको एक बहुत सुंदर श्लोक सुनाया था, आप शाम को याद होगा, नारद जी का साक्षात्कार। प्रगायताः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इवे मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी। आहूत इव, इस श्लोक में इवा ये शब्द को ध्यान रखने के लिए मैंने कहा था कल, आपको याद होगा। तो इवा मतलब जैसा कि आमंत्रण दिया हुआ हो, उस प्रकार भगवान आतुर होकर आके बैठ जाते। कहां? उस भक्त के हृदय में, उस स्थान में बैठ जाते जहां भागवत की चर्चा होती है। कल आपको मैंने कहा कि एक फंक्शन में या कोई एक उत्सव में या कोई भी कार्यक्रम में एक व्यक्ति तभी जाता है जब उसको आमंत्रण दिया गया हो। दूसरा, आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना आप्त है, इतना करीब है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक आपकी भाई की विवाह के लिए आपको इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है, आमंत्रण की जरूरत नहीं है, आपकी भाई की शादी है भाई तो हम जाएंगे, ऐसा है। उसी प्रकार भगवान जो है जहां भागवत होती है उधर आके बैठ जाते हैं। कैसे बैठते हैं? ऐसा निमंत्रण किया दिया गया हो उस प्रकार की भाव से आके बैठ जाते हैं। दूसरा, वही व्यक्ति निमंत्रण दिया बिना उस जगह जाता है जहां जब वो एकदम बिल्कुल बेशरम हो, है कि नहीं? रास्ते में किसी का विवाह का चल रहा है, मैरिज फंक्शन चल रहा है, ये देखा चले जाते हैं, सब लोग जा ही रहे हैं तो हम भी जाएंगे, चले गया जाके फर्स्ट क्लास भोजन भोजन ग्रहण करके आ गया, है कि नहीं? हाँ? तो जब ये काम कौन करता है मालूम है? हॉस्टल के लड़के होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। ये मत पूछे किया कि नहीं मुझे। वो ऐसा कर जाते, खास करके बंगाल में तो बहुत प्रचलित है, और कुछ बोलते भी नहीं, वो मालूम भी है इसको निमंत्रण नहीं मिला, बेशरम है, आया चलो खिला दो, आशीर्वाद तो मिलागा किनारे से। तो भगवान जो है ऐसा आके बैठ जाते हैं जाके निमंत्रण दिया, वक्ता आने से पहले, श्रोता आने से पहले, इधर मेरा खता होना है, मेरा गुणों को गान हो रहा है, चलो आके बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो गुणों को गुणगान सुनने की जो प्रवृत्ति है वो कृष्ण से शुरू होता है। अगर आपको 10 दिन भूखा रहे तो भी चलेगा, अगर आपका गुणों को गान कोई गाता है ना, वो पेट भर जाता है, उसमें सब भर जाता है, मन भर जाता है, पेट भर जाता है, सब कुछ भर जाता है, उस आनंद का कोई सीमा नहीं रहता। वैसे ये जो स्वभाव है अपना गुणों को गुणगान सुनना, ये प्रवृत्ति कृष्ण से आया है। इसलिए प्रगायतः स्वीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसी। जिस प्रकार भगवान जो है प्रमत्त हो जाता है, जिस प्रकार एक आतप्रतम, ये बिल्कुल निर्लज्ज हो जाता है, भागवत को अगर कोई कीर्तन करता है भगवान बिना आमंत्रण के निर्लज्ज होकर आके बैठ जाते हैं, उनका गुणों को गान करनी श्रवण करना, उसी प्रकार भक्त भी निर्लज्ज हो जाते हैं। भगवान की कथा को श्रवण करके भक्त भी निर्लज्ज हो जाते हैं, ये इसकी प्रमाण कौन देती है? स्वयं रुक्मिणी देवी देती है। रुक्मिणी देवी प्रेम पत्र लिख रही है कृष्ण को। उस समय कृष्ण ने पूछा, हे रुक्मिणी, कि आप एक राजकुमारी हो, राजकन्या हो, कन्या होने के नाते वो आपको इस प्रकार पर पुरुष को, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसको एक इस प्रकार का पत्र लिखना, ये कहाँ का न्याय है? एक प्रकार का ये निर्लज्जता जो है ये कहाँ से आया है तुमको? ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए, साधारण सी कन्या को भी नहीं लिखना चाहिए, और तुम तो राजकन्या हो, राजकन्या होने पर भी तुमने इस प्रकार का पत्र लिखना, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। इस प्रकार ये निर्लज्जता को छोड़ो, निर्लज्जता कहाँ से आई? इस प्रकार कृष्ण ने कहा तो रुक्मिणी कहती है, नहीं मैं निर्लज्ज हूं, आप क्या कर लेंगे, जो करना है कर लो, निर्लज्ज होके मैं अपना ये पत्र को लिख रही हूं। अगर आप मेरे अंदर जो निर्लज्जता जो है, अगर ये निर्लज्जता मेरे अंदर दोष है, तो कृपया आप मुझे माफ कीजिए, वो दोष जो है आपके पास भी है। क्या है वो दोष? मेरा दोष यह है कि मैंने आपके बारे में श्रवण किए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम् ते, वो कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते, मेरा एक ही समस्या है, मेरा अगर कोई गलती है निर्लज्जता होने में, आधा गलती मेरा है, क्या है वो गलती कि मैंने क्या किया आपकी गुणों को सुना। श्रुत्वा गुणान, श्रुत्वा आपके बारे में इतना श्रवण की, इतना श्रवण की, श्रवण करके मैं निर्लज्ज बन गई, मेरा निर्लज्जता का कारण सुनो आप, मेरा निर्लज्जता का कारण है आपके बारे, आपके विषय में खूब मैंने श्रवण किया, श्रवण करते करते मेरे अंदर इस प्रकार की निर्लज्जता आई। अगर इसको अगर दोष मानते हो, मेरी जो निर्लज्जता है उसको अगर आप दोष के रूप में मानते हो, उस दोष का भागीदारी आप भी हो। क्या है आपके अंदर, कौन सा दोष है, आपको कौन बोला उतना सुंदर होने के लिए, हाँ ये आपका दोष है, इसको व्याज स्तुति कहा जाता है, यानी निंदा करते हुए स्तुति। रूप गोस्वामी पाद एक जगह कहते हैं, देखो आपको अगर अपनी संसार के प्रति, पत्नी बच्चे पति और अपने धन परिवार के प्रति आसक्ति है, गोविंद का कभी दर्शन करने मत जाना, भगवान का कभी दर्शन करने मत जाना, क्योंकि एक बार तुम जाओगे उधर उतना आकर्षित हो जाओगे तुम अपनी पत्नी बच्चे परिवार को सबको भूल जाओगे, इसलिए ध्यान रखना कभी गोविंद का दर्शन मत करना, करोगे तो तुम्हारा गया आसक्ति खत्म हो गया। उसी प्रकार इधर रुक्मिणी कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते, अगर आप कहते हो कि मैं एकदम बिल्कुल पागल हो चुकी हूं, निर्लज्ज हो चुकी हूं, ये निर्लज्जता का कारण है आपके बारे में श्रवण किया, ये मेरा गलती है, हाँ? यानी भगवान भगवत कथा को श्रवण करना उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है इस संसार में, लेकिन फिर भी उसको दोष के रूप में वर्णन करती है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी निर्लज्जता जो है उसका कारण मैं हूं, नहीं, मेरा अगर कारण हो सकता है, कारण क्या है, श्रुत्वा मैंने आपके विषय में श्रवण किया है, मेरा दोष हो सकता है, लेकिन फिर भी आधा दोष आपका है। क्या दोष है आपका, कौन कहा आपको इतना सुंदर होने के लिए, आपकी सुंदरता भी दोष है, मैंने बहुत लोगों के विषय में सुना, इस प्रकार का पागलपंथी तो आया नहीं, आपके बारे में सुनने से इतना पागलपंथी आया, भागवत सुनने से पागलपंथी आया, तो मेरा पागलपंथी का अगर कोई भागीदार है, दोष का भागीदारी है, मैं आधा आप आधा 50-50%। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते निवृष्य कर्ण विवरे हरतांगतापम, ये भागवत को कोई व्यक्ति श्रवण करता है, निवृष्य कर्ण विवरे, कर्ण के रंध्रों से जब भागवत प्रवेश करता है और उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है, ये भागवत जब व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है तो क्या हो जाए, तुरंत उनका हृदय में हरतांगतापम, हर प्रकार का ताप जो है वो नष्ट हो जाता है, सारा दुख जो है नाश हो जाता है। क्यों, इस संसार में कोई और व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं सुना, किसी और को क्यों नहीं देखा, क्यों, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम, इस संसार में हे कृष्ण अगर सुनने लायक कोई व्यक्ति है तो आप ही हो, हे कृष्ण इस संसार में दर्शनीय अगर कोई व्यक्ति है तो आप ही हो, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्याच्युता विशति, आपके विषय में श्रवण करते करते, भागवत को श्रवण करते करते करते, क्योंकि रुक्मिणी जब बालिका थी, छोटी सी बालिका थी, तब से भीष्मक की राज्य में अनेकों ब्राह्मण आया करते थे, विदर्भ की है, बहुत सारे ब्राह्मण आया करते थे, भागवत सुनाते थे, और रुक्मिणी बचपन से कृष्ण के बारे में सुनती थी, कभी दर्शन नहीं कृष्ण को, देखिए दर्शन किए बिना प्रेम, जिसको आपने कभी देखा नहीं है फिर भी प्रेम उत्पन्न हुआ, कृष्ण को रुक्मिणी आज तक दर्शन नहीं की थी, केवल भूरी भूरी बहुत सुन 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 के कृष्ण के विषय में क्या कहते हैं, त्वय्याच्युता विशति आविशति चित्तमत अपत्रपम में, मेरा चित्त जो है पूर्ण तरीके से आप में आविष्ट हो गया है, आपके अलावा मुझे मन में कोई चीज दिखाई कुछ सूझता नहीं है, आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आपके अलावा आपकी कथा के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ता, पूरा जगत केवल मैं आप ही हो मेरे लिए और कुछ नहीं है, और इस प्रकार का मेरा स्थिति हो चुके ही हो चुका है, अपत्रपम में, अपत्रपम शब्द का अर्थ है शेमलेस निर्लज्ज, मेरी निर्लज्जता का आप कारण, आप ही कारण, आपकी कथा ही कारण है। गोपियां जो है कृष्ण कथा के विषय में, भागवत के विषय में कहती हैं कि तव कथा अमृतम। वैसे देखा जाए, एक अर्थ के रूप में देखा जाए, तव कथा अमृतम, आपकी कथा तो अमृत है और उसको सुनने से हम जीवित है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो कैसे जीवित रहेंगे हम। और हरेक गोपी गीत का, हरेक श्लोक का दो अर्थ होता है। एक चंद्रावली की पक्ष की गोपियों का अर्थ रहता है, जो दक्षिण भाव में है, जो कृष्ण की जो गोपी गीत का एक श्लोक का, और एक अर्थ है राधारानी के पक्ष में, जो वाम भाव के जो पक्ष के गोपियां हैं उनका अर्थ अलग रहता है। उनका अर्थ क्या है, तावा कथा मृतम, हे कृष्ण आपकी कथा जो है हमको मार रही है, मार रहे। क्यों मार रही है, वैसे आपको भूलना चाहते हम, फिर भी जब कोई आपकी कथा सुनाता है ना, तो आपके साथ में हमने इतना सुंदर अलग अलग प्रकार की लीलाओं को हमने किया, उस लीला को जब स्मरण होता है उस समय वो कथा जो है हमको स्मरण दिला के हमको मारता है। तो एक ही श्लोक के इसका दो अर्थ रहता है। उसी प्रकार इधर रुक्मिणी जो है इस प्रकार कहती, अपत्रपम में, मेरी निर्लज्जता का कारण आप ही हो, मैं पत्र लिख रही हूं, ये लव लेटर लिख रही हूं। एक ही लव लेटर है जो ब्रह्मचारी पढ़ सकता है ये अगर लव लेटर पढ़ने की बहुत इच्छा है तो ये पढ़ लीजिए, 7 श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। उसमें निर्लज्जता, भगवान जिस प्रकार कथा श्रवण करके कथा की आशा में निर्लज्ज हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्त जो है वो भगवत कथा भागवत सूत्र के बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं। उनको कोई किस कुछ लेना देना नहीं, कभी भी कहीं भी हो वो भागवत को सुनते रहते हैं। ये निर्लज्जता जो है जब तक वो नहीं आता तब तक वो भक्त नहीं है। जैसे आप देखिए रास्ते में हम खूब नाचते हैं, रास्ते में कोई कोई नाचता है क्या, सभी व्यक्ति कोई नाचता है क्या, नहीं नाचता, हम नाचते हैं। सुबह सुबह 4:30 बजे कोई नाचता है क्या, ध्यान का समय होता है लेकिन हम नाचते हैं, क्यों, ये निर्लज्जता का। जो भागवत कथा सुना वो निर्लज्ज हुआ, जितना कृष्ण निर्लज्ज हो रहे थे, आहूत एव मे शीघ्रम, निर्लज्ज होके बिना आमंत्रण का आके बैठ जाना निर्लज्जता का लक्षण है। रुक्मिणी बात कहती है, आपकी कथा को श्रवण कर निर्लज्ज हो चुकी हूं, बस मुझे ये दोषी मत ठहराइए। आगे कहती है, कृष्ण ने कहा कोई और नहीं मिला क्या तुमको, किसी और के बारे में सुनना नहीं। क्वात्वा मुकुंद महती गुणशील रूपा विद्या वयो द्रविण दाम विरात्मतुल्यम, आत्मतुल्यम, आपके समान इस संसार में कोई नहीं है, आपके जैसा विद्वान, आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा धनी, आपके जैसा शक्तिशाली, आपके जैसा माधुर्यमय स्वरूप वाला इस संसार में कोई है ही नहीं, आत्मतुल्य आपके समान है ही नहीं। तब कृष्ण ने कहा कि अच्छा ये ठीक है, मैं समझता हूं कि मेरे समान कोई है ही नहीं, इस संसार में क्या तुम अकेली हो क्या, मेरे बारे में श्रवण करके मेरे पीछे पागल हो गई है, इस संसार में और कोई नहीं है, बहुत सारे स्त्रियां, वो क्यों नहीं हुई पागल। कहते धीरा पतिम कुलवती, ये कृष्ण जो आपके बारे में नहीं सुनता है ना, आकृति जो आकृष्ट नहीं हुआ वो कुलवती नहीं है। ऐसा कौन कुलवती नहीं है जो आकृति आकृष्ट नहीं होगी, यानी दूसरे शब्दों में जो भागवत का श्रवण नहीं करता वो कुलवती नहीं है, उनका कुल ठीक नहीं है, वो आचर मनुष्य कुल का ही नहीं है। इस भाव को व्यक्त करते धीरा पतिम, ऐसा कौन है जो आपकी आपको पति के रूप में स्वीकार नहीं करती है, कुलवती हो तो स्वीकार करेगी, कुलवती नहीं तो स्वीकार नहीं करेगी। न वृणीत कन्या काले, संक्षिप्त में बता रहा हूं, काले चिंता मत करो कृष्ण, भविष्य में बहुत सारे लोग आपके बारे में सुनेंगे, सुनते सुनते धीरे धीरे से आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, वो भी पागल हो जाएंगे, चिंता मत करो। काले नृसिंहन लोक मनोभिरामम तन्मे भवान कलुरित पतिरंग जायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र भवो विदेही मावीर भागम अभिमताश्र चैद्यमारा गोमायुवान मृगपतेर बलिमंबुजाक्षा। अद्भुत श्लोक है। तन्मे भवान कलुव्रत पतिरंग जायाम आत्मार्पितश्च, आप आओ, आके तुरंत मुझे लेके जाओ, बस बहुत हो गया है विदर्भ में, मैं परेशान हो चुकी इधर, क्योंकि अनेकों मेरे भाइयों, भाई चाहता है कि मैं शिशुपाल से विवाह करूं, इससे विवाह करूं, क्या मैं परेशान हो चुका हूं, आके तुरंत लेके जाओ। अच्छा कृष्ण कहते ऑर्डर दे रही हो मुझे, ये कौन सा प्रेम है, मेरे प्रति शरणागति होना जो है सीखो, बलि महाराज से सीखो, बलि महाराज जो है शरणागत हो, शरणागति उनसे सीखना चाहिए। रुक्मिणी कहती है बलि महाराज की शरणागति छोड़ो, उनका शरणागति जो है निर्भाव शरणागति है, मेरी भाव जो है, मेरा शरणागति जो स्वभाव शरणागति है। आपको ये समझ में नहीं आता क्योंकि ये राजा के रूप में बैठे हो ना, भाव क्या समझते हो। मेरी शरणागति जो है स्वभाव शरणागति है, बलि महाराज का तो निर्भाव शरणागति है। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है, बड़े प्रिय आपके लिए, तो आपने क्या किया, बैठाया, बहुत सुंदर व्यंजन बनाया, प्लेट बनाया, आपके सामने रखा, मैंने तो आपको समर्पण कर दिया हूं, आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो कहिए मत खाइए, ऐसा बोलोगे? शरणागति है, अर्पण भी किया है, लेकिन इस प्रकार का बोलना क्या है, निर्भाव शरणागति है। जबरदस्ती करना और खाओ और खाओ, ये जबरदस्ती जो है वो जो स्वभाव शरणागति है। इसलिए रुक्मिणी कहती है, भगवान मैं आपको पूर्ण तरीके से समर्पित हो चुकी हूं और मैं जबरदस्ती करूंगी। ये जबरदस्ती जो है ना, ये प्रेम का लक्षण है, स्वभाव शरणागति है, ये पहचानो। आत्मार्पितश्च भवतो त्रभवो विदेही। मां एक्चुअली देखा जाए, कृष्ण चिंता मेरे लिए नहीं, मैं तो अपने प्राण त्याग कर दूं, मेरा क्या जाता है, मुझे बहुत चिंता है आपके विषय में। अगर शिष्यपाल ने आके मुझे लेके गया, मैं तो प्राण त्याग कर दे लेके नहीं जा सकता, लेकिन लोग आपको निंदा करेंगे। देखो रुक्मिणी जो है कृष्ण की है, शिष्यपाल लेके गया, कैसा कृष्ण, देखो अपने भक्तों को देखभाल नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप मुझे लेके नहीं जाओगे तो समस्या आपकी, मैं तो प्राण त्याग कर दूं, मेरा क्या जाता है। इसलिए महावीर भागम अभिमताष्ट चैद्य महाराज गोमाइवान। जैसे एक शेर शिकार किया किसी को, ऊपर एक हिरण को, हिरण को जब शिकार किया शेर ने, और शेर बस अभी उनको खाने ही वाला है, शेर के मुख से आके एक लोमड़ी लेके चला गया शिकार को, लोग हंसेंगे शेर के ऊपर, मैं आपका शिकार हूं, और ये जो लोमड़ी है कौन, शिशुपाल, वो मुझे लेके जाएगा, तो लोग आपका निंदा करेंगे क्योंकि वो तो लोमड़ी है, आप तो शेर हो, मेरा क्या जाता है। इसलिए मुझे आपकी प्रति बड़ा चिंता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने पुण्य कार्य नहीं किया है, पुत्रेश्च दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुरुवार्चनादि विरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रजेत्य पाणिं गृह्णन्तु मे न तमघोष सुताधयोन्ये। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने इतना जो पुण्य कार्य होना चाहिए जो आपको प्राप्त करने के लिए वो नहीं किया है, जैसे कुआं खोदना, दान धर्म करना, अलग प्रकार के व्रत को पालन करना, देव अभिप्रा देवताओं का आराधना करना, ब्राह्मणों की आराधना करना, मैंने नहीं किया, अगर आप ऐसा सोचते हो आराधितो यदि गजाग्रह यत्य पाणिं, अगर आप ये सोचते मैंने नहीं किया है, ठीक है, मैं क्या करूंगी, अपने प्राण को त्याग करूंगी। अगर आपने ये सोचा कि मैंने ये सब किया, आराधितो यदि गदाग्री यत्य पाणि, मेरा पाणी, मेरा हाथ को ग्रहण करो, गृणंतु नाद मघोष सुतादयोन्ये, ये किसी और को मैं उसको शरीर को छूने नहीं दूंगी, ये समझ लेना, इसलिए जल्दी आओ, आके मुझे ग्रहण करके लेके जाओ। देखो सो भवानि त्वं मजिदोद्धोने विदर्भान् गुप्त समेत प्रतना प्रतिभि प्रतिपरीता निर्मत्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रहस्या अमा राक्षस विदिनोद्धव वीर्य सुल्कान। आओ अपने वीर को दिखाओ और मुझे लेके जाओ। आके कैसे आओ, पूरा सेना के साथ आओ, और सेना को बाहर खड़े करके रखो, जब अंदर आओगे गुप्त रूप में आओ, गुप्तम गुप्तः समेत्य प्रतना पति विपरीतः, गुप्त रूप में आओ, आके मुझे अपहरण करके लेके जाओ। मान लो बीच में कोई व्यक्ति आपको आक्रमण करने के लिए आता है, सेना जो है बाहर घेरी हुए, वो सेना लड़ती रहेगी, आप मुझे अपहरण करके लेके जाओ, राक्षस विधानेना मुझे विवाह करो, राक्षस विधान में विवाह करो। अच्छा, आपको डर लगता होगा, युद्ध होगा, अंतपुर में आऊंगा तो आपकी बंधुओं को वध करने की आवश्यकता पड़ेगी, चिंता मत करो, मैं एक आइडिया देती हूँ, मैं तो क्षत्राणी हूं ना, आप तो यादव हो, जानते नहीं युद्ध करना, अपहरण करना, इतना ज्यादा जानते नहीं हो, तो मैं बताती हूँ आइडिया। अंतपुरांतरचरी महानित्य बंधु त्वाम उद्वहे कथमिति प्रवदामि उपायम, मैं उपाय को मैं आपको कहूंगी, पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नववधूर गिरिजा उपेयात। पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा, ऐसा हमारे पिता है कि जब विवाह करने जाते हैं, विवाह का समारोह के पहले कुलदेव यात्रा होती है, कुलदेवी है दुर्गा देवी, उनसे उनका दर्शन लेके आशीर्वाद देने के लिए हम जाते हैं। उस समय केवल स्त्रियां ही रहेंगे मेरे साथ में, सैनिक बहुत दूर रहेंगे, उस समय क्या करो आप आओ, आके चुपचाप आके मुझे अपहरण करके लेके चले जाओ। यस्याम बहिर्नववधूर गिरिजाओं पे यात, अगर आप नहीं आओगे मैं क्या करूंगी। यस्याम गृपंकज रजस्नबनम महंतो, मैं स्नान करूंगी किससे, आपकी चरण कमलों की धूली से स्नान करूंगी। और ये चरण कमलों की धूली का महिमा क्या है, वांछन्ति उमापति रिवात्मतमो बहत्ये उमापति, शिवजी भी आपकी चरण कमलों की धूली के द्वारा स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि अपने तमोगुण को नाश करने के लिए, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए नाश करते हैं। ऐसा जो चरण कमलों की धूली है उससे मैं स्नान करूंगी। यर्याम भुजाक्षण लभेत भवत प्रसादम, फिर भी आपका कृपा प्राप्त नहीं होता, आप आके मुझे ग्रहण करके लेके नहीं जाओगे। अंबुजाक्षा, आपका विरह को अनुभव कर रही हूं, विरह ताप से उत्पन्न हुआ जो अग्नि है उस अग्नि में जल के अपना प्राण त्याग कर दूंगी। अंबुजाक्षा, मुझे कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि उस विरह में भी मैं आपका अंबुजाक्षा, आपकी कमल नयनों को स्मरण करूंगी, उससे उत्पन्न हुआ जो शीतलता है उससे विरहाग्नि मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, आप उसका चिंता मत करो, मैं प्राण त्याग कर दूंगी, अगले जन्म में इंतजार करूंगी आपका। अगले जन्म में भी अगर प्राप्त नहीं करेंगे, शत जन्म विद्याम्बुजाक्षर लभे तबत प्रसादम जय्याम आसूम, आसू मतलब प्राण को त्याग कर दूंगी, जय्याम व्रत कृषाम शत जन्म विद्यात, अगले जन्म में भी प्राप्त नहीं होंगे तो उसमें भी मैं आपका विरह को अनुभव करते हुए अपने शरीर को त्याग करूंगी। उसके अगले जन्म में भी प्राप्त नहीं हुआ तो अगले जन्म में शत जन्म विद्या, 100 जन्म भी क्यों ना हो, कृष्ण मुझे केवल आपको ही प्राप्त करना है, मुझे इस प्रकार का आपको ही प्राप्त करने का चित्त जो है, इस प्रकार की मति जो है वो आपकी कथा श्रवण कर से आई। भागवत कथा वही मान भागवत व्यक्ति को पागल बना देता है, अगर पागल नहीं हुआ कथा भी सुना नहीं। इस प्रकार की भागवत कथा में अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, श्रवण से प्रेम, भागवत की श्रवण से प्रेम, ये एक पहला उदाहरण है रुक्मिणी। दूसरा उदाहरण है हमारे द्विज पत्नी ब्याह, भगवान श्री कृष्ण अभी ग्वाल बालों के साथ विचरण कर रहे हैं, ग्वाल बालों को विचरण करते करते उनको बहुत भूख लगा, ग्वाल बालों को बहुत भूख लगा, ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण और बलराम आपने बहुत सारे असुरों को मारे, बहुत असुरों को मारे, अगासुर क्या क्या असुर को नहीं मारे बताओ, रोज भागवत में जो असुरों का लिस्ट दिया गया वो तो बहुत कम है, रोज 4-5 को तो मारते थे। ग्वाल बालों का दिन भर कृष्ण लीला और घर में जाके कृष्ण कथा, घर में जाके कृष्ण है, इसको मारा, इसने ऐसा किया, पूरा कृष्ण कथा, ये और कुछ उनके मन में सोचता नहीं है, ये ग्वाल बालों के जीवन है। तो ग्वाल बालों ने कहा राम कृष्ण बलराम और कृष्ण, हमने देखा आपने बहुत सारे असुरों को मारा है, लेकिन भूखासुर को मार के दिखाओ, सबसे बड़ा असुर होता है भूखासुर, ये भूख होता है ना, उसको एक बार भूख चढ़ जाता है वो कुछ भी करता है, अच्छा खासा व्यक्ति भी उसका दिमाग पड़ जाता है, तो आप ये भूखासुर को मार के दिखाओ। कृष्ण मुस्कुराने लगे, समझ में आया नजदीक में मेरे प्रिय भक्त है, द्विजपत्नी गण है, जिन्होंने मेरे बारे में इतना श्रवण किया, इतना श्रवण किया, श्रवण करके मुझे दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई, मेरा दर्शन करने की लालसा, दर्शनोत्सुका, उनके प्रिय जो भक्त है प्रसीदम इदम अब्रवीत, उनको प्रसन्न करने के लिए ग्वाल बालों को कृष्ण ने क्या कहा, हे तत्याता देव जन्म, अब नजदीक में देवताओं की यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः स्वर्ग कामया, स्वर्ग की प्राप्ति करने के वो यज्ञ कर रहे हैं, सत्रम आंगिरसम नामा, आंगिरस नामक सत्र चल रहा है, उधर जाइए, आप जाके क्या करो मांगो, लेकिन ध्यान रखना उधर जाके कभी ये मत बोलना कि कृष्ण को भूख लगा है। पहले बोलना कि बलराम को भूख लगा है, कृष्ण भी साथ में है। क्योंकि ये ब्राह्मण लोग जो है ना क्षत्रियों से डरते हैं, वो क्षत्रियों को दे देंगे मात मान के, लेकिन वैश्यों को तो बहुत नीचा देखते हैं। मैं तो वैश्य हूं और बलराम जो है क्षत्रिय है, तो उनका नाम लेना। तो ग्वाल बाल सब गए जाके, बोलना भी बराबर बोलना चाहिए ना। तुमने कहा कृष्ण ने हमको भेजा है, कृष्ण के आदेश से माए बलराम जी को भूख लगा है, साथ में कृष्ण भी है, कौन बोला उनको बोलने के लिए? हाँ, जैसे किसी का फोन आता है, घर में कर्जा था, जिसने कर्जा दिया पैसा दिया था उसने फोन किया, बच्चे ने फोन उठाया तो उसने पूछा पापा है, तो मैंने पूछा कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति बोल रहा हूं, तो बच्चा बोलता है पापा फलाना व्यक्ति बोल रहे हैं। तो पापा ने बोला बच्चे को, उसको बोल दे रहा कि घर में नहीं है पापा, घर में नहीं है। तो फोन में बोला है पापा जी बोल रहे हैं कि वो घर में नहीं है करके बोलने के लिए। कौन बोला उसके ऐसा बोलने के लिए? उसी प्रकार एक बार बार ने कह दिया कि कृष्ण ने हमको आदिष्ट कारिण, हम कृष्ण के आदेश से आए हैं और बलराम जी को भूख लगा है, साथ में कृष्ण भी है, तो उनको थोड़ा सा अन्न दीजिए। बेचारे ग्वाल बाल दंडवत किए सब कुछ किए, फिर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ब्राह्मण लोग दिए नहीं। ग्वाल बालों ने कहा अगर आप ऐसा सोचते हो कि अन्न देना वर्जित है, अभी तक पूर्णाहुति नहीं हुआ है, नहीं, एक बार बलि होने के बाद आप अन्न दे सकते हो, केवल एक प्रकार का जो यज्ञ है केवल उसी प्रकार का यज्ञ में शौत्रमाना नामक यज्ञ में ही पूर्णाहुति के बाद ही प्रसाद वितरण, बाकी अन्य यज्ञों में प्रसाद का वितरण जो है जैसे भोग लगाया तुरंत वितरण किया जा सकता है। जिसको भूख लगा है उसको अन्न खिलाने से कोई बड़ा धर्म होता है क्या? बाल बालों ने बहुत समझाने के लिए प्रयास किया लेकिन ब्राह्मणों ने ना हा बोला ना ना बोला, अपने स्वाहा 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 करते रहे करते आ रहे हैं। तो नते यद ओम इति प्रोचुर, ना हा बोलते हैं न नेति च परंतपा। जैसे सुखदेव गोस्वामी लीला का वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित का क्रोध है, अरे कृष्ण को भूख लगा, ये लोग खिलाते नहीं, ये कौन से ब्राह्मण है, अगर मैं होता तो सीधा कर देता। तो सुखदेव गोस्वामी थे सच में, अगर तुम होते ना परांतपा, तुम उधर होते ना सबको सीधा कर देते। आगे तद उपाकरण्य भगवान वापस आके बोलने लगे, बाल बाल हे भगवान, हे कृष्ण क्या करे, कुछ दे नहीं आए, निराश हो गए। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले जाओ बेचारा पुनर्गोपान, हे गोप आप जाओ, किसके पास जाओ, आप द्विज पत्नियों के पास जाओ, दर्शयन लौकिकीन गतिम, चिंता मत करो। ये लौकिक भिक्षु होता है ना, भिखारी, कोई देता है कोई नहीं देता, कोई गाली भी देता है, इसलिए ये स्वभाव है। भिक्षा मांगने वालों का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आप भिक्षा मांगने गए, जो दिया उसका ही भला, जो नहीं दिया उसका ही भला, जो गाली दिया उसका ही भला, सबका भला, इसलिए आप चिंता मत करो, आप जाओ, जिसके पास जाओ द्विज पत्नियों के पास जाओ। बज्ञापयित्वा पत्नी भी, ग्वाल बालों से उधर नहीं उधर भी नहीं मिला तो उनके पतियों ने मना कर दिया, चिंता मत करो। सा सन्निकर्षम आगतम दर्शयन्ति कामान अन्नम वह स्निग्धा मयी उषिता दिया, वो आपको जरूर अन्न देंगे, क्योंकि उषिता दिया उनका मन पूर्ण तरीके से मुझे मेरे प्रति लग चुका है, मुझसे इतना प्रेम करते हैं वो आपको माना कभी नहीं कर सकते। लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे प्रति उनका इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उधर गलती से भी ये मत बोलना कृष्ण को भूख लगा है। अगर उनको पता लगेगा कृष्ण को भूख लगा है, कृष्ण को कष्ट है, बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकते मुझे भूख लगा है करके, वो इतना भी सहन नहीं कर सकते मुझे कष्ट हो रहा है, वो बेहोश हो जाएंगे, उधर भी से अन्य नहीं मिलेगा। गलती से ये मत बोलना, इतना बोलना कृष्ण नजदीक में आए हैं, इतना बोलना बलराम के साथ में। तो ग्वाल बाल गए, कहां गए, पत्नीशालायाम, पत्नी के शाला यानी पाकशाला, एक यज्ञशाला होता है एक पाकशाला होता है, दोनों यज्ञ है, पाकशाला के बिना यज्ञशाला जो है कोई उसका अर्थ नहीं है। यज्ञशाला में अग्नि पाकशाला से जाता है, ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट है। तो सभी लोग गए जाके बोलने लगे, कि नमो वो विप्रपत्निभ्यो, सारे विप्रपत्नि आपको दंडवत प्रणाम, निबोध तवचांसि नः, आपको हम ये बात कहना चाहते हैं, इति विदूरे चरतः, इति विदूरे चरतः, कुछ दूर में कुछ चर विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, कौन, कृष्णे अविष्टवयम्, कृष्णे वाविष्टावयम्, स्वयं कृष्ण नजदीक में, आपके गांव के नजदीक में है। बाल बोलने इस बार बराबर बोला, जैसे कृष्ण ने कहा उसी प्रकार, कृष्ण को भूख लगा है कुछ नहीं कहा, कृष्ण नजदीक में है इतना कह दिया, लेकिन विप्र पत्नी द्विज पत्नी भागवत को इतना सुन चुके, इतना सुन चुके कि कृष्ण का नाम सुनने मात्र से बेहोश हो गए। कृष्ण क्या कहा था, कृष्ण को भूख लगाए मत बोलना, खाली मैं आया हूं इतना बोलो, लेकिन उनके हृदय में इतना प्रेम था कृष्ण भी अंदाजा नहीं लगा पाया। कृष्ण का नाम श्रवण करने मात्र से बेहोश हो दो गाल बात सोचने, अरे आज तो ऐसा लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा, बेहोश हो कुछ। तो एक ग्वाल बाल ने कह दिया, अरे कृष्ण को भूख लगाया, हमको भूख लगाए तो क्या होगा हमारा। तो द्विज पत्नी द्विप्र पत्नी बेहोश हो गए थे, कृष्ण को भूख लगा है ये बात सुन के खड़े हो गए और अपने आप को बरसने लगे, अरे क्या क्या, देखो हम हमारा मन देखो हमारा बेहोशी, जाने दो भाड़ में, चलो सब इकट्ठा करके गए कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण प्रेम का आवेश में श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यम तद्दर्शनोत्सुका, नित्यम तद्दर्शनोत्सुका, कृष्ण का दर्शन करने की उत्सुकता है, कहां से आई, भागवत का श्रवण से आई, भागवत का श्रवण से उत्सुकता रहती है कृष्ण का दर्शन की उत्सुकता। चतुर्विदम बहुगुणान, अलग प्रकार के अन्न को लेके गए और कृष्ण से मिलने गए। निषिद्धमाना पतिवीर, पतियों ने रोकने का प्रयास किया, कोई रोक नहीं पाया, एक पत्नी को रोक दिया तो उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिया, कृष्ण विरह में क्या जीना, कृष्ण विरह का ताप से उन्होंने अपने प्राण त्याग किया। सभी लोग जो है वो कृष्ण से मिलने अशोक वन में गए, कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन कर रहे हैं, अशोक वन का जो पुष्प है या उनके वृक्ष का जो पुष्पों के बीच में थोड़ा सा दो गैप रहता है, उधर से कृष्ण का दर्शन हो रहा है। शम हिरण्य बरदी वरमाल्य मारा धातु प्रवाला नटवेश मनमशे विन्यस्त समितरेण दुरंतमाब्जम धुना दुमानमाब्जम कर्णोपलाक्ष कपोल मुकाब्जहासम। कृष्ण का सुंदरता वर्णन हो रहा है, मुकाब्जहासम, मुकारविंद बहुत सुंदर हंसी है। और शम हिरण्य परिधिम, हिरण्य वस्त्रों को धारण किए भगवान श्री कृष्ण, धाप्त प्रवाला नटवेशम, नट वेश में क्या किए हुए कृष्ण, अपनी भुजाओं अपने ग्वाल बाल की भुजाओं के ऊपर हाथ रखे हुए हैं और कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए एक हाथ में वो कमल पुष्प घुमा रहे हैं, घुमाते हुए कह रही, हे द्विजपत्नीगण, आपने मेरे विषय में इतना श्रवण करके इतना प्रेम को प्राप्त कर लिया, आपको दर्शन करने की उत्सुकता, मेरे हृदय इस प्रकार के, मेरा हृदय इस प्रकार घूम रहा है कमल के पुष्प जैसा, कि कृष्ण का हृदय इस प्रकार आतुर हो जाता है। जब कोई भक्त भागवत सुन के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण आतुर हो जाते हैं उस भक्त से मिलने के लिए, जिस प्रकार भक्त आतुर हो जाते कृष्ण से मिलने के लिए, ये भागवत का श्रवण की महिमा है। आगे प्रायश्रुता प्रयोद्धया कर्ण पूर्णैर, तो बहुत समय से कर्ण पूर्णै, कर्णों से कृष्ण के बारे में भूरी भूरी सुना था। यस्मिन् निमग्न मनसा, निमग्न मनसा पूर्ण तरीके से कृष्ण में निमग्न हो गए, तम अताक्षिरंध्रैर, खास करके भगवान कृष्ण के सामने राधा राजवीर के सामने इसकी चर्चा इसलिए हो रही ताकि ये बात बताने के लिए, जब भगवान का दर्शन होता है ना, कैसे दर्शन होना चाहिए, जिस प्रकार द्विज पत्नियों ने किया कृष्ण को, कैसे दर्शन किया, अत्याक्षिकर्णरंध्रैर, आक्षिकर्ण आक्षिरंध्रैर, अताक्षिरंध्रैर, आक्षिरंध्रैर मतलब आंखों का जो रंध्र है उसके द्वारा कृष्ण का स्वरूप को उन्होंने पी लिया, पी के हृदय में बसाए। ये कैसे संभव हुआ, भागवत से। इसलिए दर्शन की पूर्णाहुति भी भागवत की वजह से होता है, दर्शन भागवत के बिना दर्शन दर्शन नहीं है। अंत प्रवेश सुरुचाम, अंत प्रवेश, अंदर कृष्ण को दर्शन करा के सुरचाम सुचिराम उनको आलिंगन करके कृष्ण का आलिंगन करते हुए हृदय हृदय में आनंद को अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार जैसे द्विज पत्नी आए, कृष्ण कहा स्वागतम स्वागतम, आओ स्वागत है, स्वागतम नो महाभागा अस्यातम करवामि हा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जो श्लोक को कृष्ण ने गोपियों को कहा था जब रासलीला में बांसुरी बजाते हुए सारे गोपियों को आकृष्ट करके कृष्ण क्या स्वागतम नो स्वागतम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, उसी श्लोक को इधर किया। द्विज पत्नियों को कृष्ण समझाया, देखो आप बहुत अच्छा है, आगे हो, अन्न लाए हो, सब कुछ हम ग्रहण कर लेंगे, अब वापस जाओ, वापस जाओ। क्योंकि कृष्ण के मन में इन द्विजपत्नियों का प्रेम कोट देख के उनको ऐसा लगा अब मेरे प्रेम भक्त उनके साथ रास करूंगा। लेकिन उसी समय कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति प्रवेश किया उनके हृदय में, ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये रूल नहीं है, जो गोपी जन्म जिसको प्राप्त है उसी के साथ रास करना है, ये ब्राह्मण जन्म है उनका, इसकी वजह से उनका स्पर्श के आप स्पर्श नहीं कर सकते उनको। तो इस वजह से कृष्ण ऐसा ऐश्वर्य वाली बातें कहने लगे, तो आप तो मेरे प्रति प्रेम प्राप्त हो चुका है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे साथ में ही रहोगे तो आपका प्रेम रहेगा, आप अपने घरों में रह के रोज भागवत को पढ़ के मेरा संगति प्राप्त कर सकते हो, मेरा अर्च वगैरह को स्थापना करके मेरा पूजा कर सकते हो। इस प्रकार की बातों को कहकर कृष्ण ने द्विज पत्नियों को वापस भेज दिया। द्विज पत्नियों ने कहा हम वापस कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पत्नीगण तो पतिगण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। और इतना भी नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो द्विज वंश के हैं, ब्राह्मण वंश के हैं, और आप तो गोप वंश के हैं, तो हमारे साथ रमण करने से आपको कुछ शर्मिंदा होता है, आप चिंता मत करो, गोपियों के साथ रास करो, गोपियों के साथ रहो, जब आप गोपियों को आलिंगन करोगे उस समय से तुलसी का दल जिनसे गिर जाता है, उस तुलसी का दल है उसको अपने सर पे धारण करके इसी वन में रह जाएंगे, वन देवता के रूप में रह जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। कृष्ण ने कहा नहीं जाना पड़ेगा आपको, वापस भेज दिया। क्यों? ये भागवत का सबसे महत्वपूर्ण लीला है। रम्या कुजदुपासना व्रजवधु वर्गेन वा कल्पिता, गोपियों के बच्चिन्नों में उपासना करने की विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी, हमको दिया ये विधि है। और गोपियों की महिमा का इस लीला में वर्णन आता है। भले ही गोपियों जैसा प्रेम द्विजपत्नियों में था, फिर कृष्ण ने उनको स्पर्श नहीं किया, रास नहीं किया, गोपियों के साथ किया। क्यों? क्योंकि जब तक किसी को गोपी जन्म प्राप्त नहीं होता, गोपियों के गर्भ से व्यक्ति जन्म नहीं लेता, गोप वंश का नहीं होता, कृष्ण उसके साथ रास्ते करेंगे, उसको स्पर्श नहीं करेंगे। ये भागवत की विशेषता है। भागवत हमको ऐसा स्तर में लेके जाता है, गोपी जन्म प्रदान करता है, तब कृष्ण को स्पर्श करने का योग्यता प्राप्त होती है। साक्षात सच्चिदानंद में स्वरूप कृष्ण का स्पर्श, उनके साथ रास, उनके साथ खेलना, ये सब भागवत हमको प्रदान कर सकता है, भागवत की शक्ति है। तो कृष्ण का चिंता मत करो, द्विजपत्नी आप जाओ, घर वापस जाओगे, मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, खास करके आपके पति के रूप में, परमात्मा के रूप में पति के हृदय में उनको समझा दूंगा आपको स्वीकार करने के लिए। आपके पतिगण में अंदर संशय आ जाता है तो मैं देवताओं को कहूंगा, और देवतागण से पूछेंगे आपके पतिगण, देवता लोग भी कहेंगे आपको स्वीकार करो। तो गए ब्राह्मण, गए द्विज पत्नीगण अपने घर में, गए उनके पतियों ने उनको दर्शन किया, देख के दृष्ट्वा भगवती माताया, पत्नी नहीं, ये सारे ब्राह्मणों ने कि उस सारे द्विज पत्नियों को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखा, किस रूप में? भगवती देवी के रूप में देखा, और वखान करने लगे, देखो देखो कितना अद्भुत है उनका स्वरूप, इतना भक्ति है, उनके पास कोई प्रकार का संस्कार नहीं है, उनके पास कोई इस गुरुकुल में जाए शिक्षा ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इनका अद्भुत भक्ति का भक्ति देखो अद्भुत, केवल भागवत श्रवण करके, भगवान की कथा को श्रवण करके। क्योंकि जब गोपियां ब्राह्मणों की गांव में आए करती थी, किसके लिए आती थी? दूध दही सब्जी तरकारी बेचने के लिए आती थी, साग इत्यादि बेचने के लिए आती थी। द्विजपत्नी कण कहते थे ये तो ठीक है, पिछले दरवाजे में आओ, बैक डोर में आओ। तो आती थी गोपियां, सब दूध रखा, दही रखा, सब रखा, अभी ये इतना बेचिए, ये लीजिए, वो लीजिए। द्विजपत्नी कण कहती थी अब घर में ये सब बाजू में रखो, सब खरीद लूंगी, चिंता मत करो। आज कृष्ण क्या क्या बताओ, आज कृष्ण क्या क्या बताओ, अभी कृष्ण कथा चल रहा है। रोज यही काम है। गोपियों से उन्होंने कृष्ण कथा को इतना भूरी भूरी श्रवण किया, जिसकी वजह से उन्होंने सबको इस प्रकार का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ कि उनके पति भी उनको पत्नी दृष्टिकोण से नहीं देख रहे थे, किस दृष्टिकोण से देख रहे थे, महान भक्त है। और अपने आप को बरसने लगे, दिग्जन्म है, क्या जन्म है, क्या फायदा इस जन्म का, दिग्व्रतम, हमने बड़ा बड़ा व्रत लिया, दिखार इस व्रत का। इनकी हृदय से इस प्रकार की अद्भुत भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति हमको प्राप्त नहीं, हमकी पत्नियों को प्राप्त है। और सारा जगत के गुरु को, गुरु से उनका प्रेम हुआ, कृष्ण से प्रेम हुआ। आज से भले ही ब्राह्मण पूरा समाज का गुरु होता है, लेकिन आज से हम इन द्विज पत्नियों जो भागवत को भूरी श्रवण किए, उनको हम गुरु बनाएंगे। ब्राह्मणों का, द्विज पत्नियों का उद्धार का लीला है, अद्भुत लीला है। वैसे भागवत इन अद्भुत अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया है। अन्य पुराणों में जो प्राप्त नहीं है, भागवत में प्राप्त होता है। पुराणम पंच लक्षणम, पुराणों में केवल पांच लक्षण होता है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्मंत्राणि च वंशानुचरितं चैव पुराणम पंच लक्षणम, पुराणम पंच लक्षणम। लेकिन भागवत में दस लक्षण है, इसकी वजह से भागवत को महापुराण कहा गया है। भागवत को महापुराण कहा गया इसकी वजह से आपको आज का जो जिस श्लोक के विषय में मुझे वर्णन करने के लिए कहा गया है, उसके लिए एक सिंहासन में बैठा गया है। एक आचार्य वर्णन करते हैं, चक्रवर्ती मतलब राजाओं का राजा, जब वो बैठते हैं सारे राजा नीचे बैठते हैं, उसी प्रकार ये जो पुराण है, भागवत पुराण है, वो चक्रवर्ती है, पुराणों की चक्रवर्ती है। इसकी वजह से भागवत को हेम सिंहासन में, रत सिंहासन में बैठाया जाता है। बैठा के इसकी जो महत्ता है, उसकी महिमा को सारे जगत में प्रकाशित किया जाए। देखो, ये साक्षात कृष्ण प्रेम रस का स्वरूप है। रसमालयम, ये रस क्या है, कृष्ण प्रेम रस। ये कृष्ण प्रेम रस कृष्ण से उद्भूत होता है, राधा कृष्ण से उद्भूत होता है। वैसे तो उधर इतना ऑल्टर में जगह नहीं, इसकी वजह से अलग ऑल्टर बनाया गया इधर, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए ये भागवत जो है, श्रील रूप को जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण जिस वेदी पे उपस्थित है, उस वेदी में रख के क्या करना चाहिए, लोगों को दान देना चाहिए। अलग अलग प्रकार का दान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है ये भागवत का दान, जो आज का विशेष दिन के उपलक्ष में 12वां स्कंद का 13वां अध्याय का आखिरी अध्याय है, 13वां श्लोक। प्रवृष्टपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सयाति परमां गतिम। केवल भागवत में नहीं, ये श्लोक आपको प्राप्त होता है अलग अलग पुराणों में। लिखित्वा चयो चयो दद्यात् धेम सिंहास संयुतम पौष्ट प्रौष्टपद्याम पौर्णमास्याम चयाति पराम गतिम। ये श्लोक जो है मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है, भागवत में भी है, मत्स्य पुराण में भी है। लिखित्वा तद च यो दद्यात्, लिखित्वा मतलब वो टाइम प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, पूरा भागवत के 18,000 श्लोकों को लिखो, लिख के क्या करो, दद्यात दान करो। किसके ऊपर रख के दान करो, हे मसिम्हासन समन्वितम, वही शब्द है भागवत में जो श्लोक आया, हे मसिम्हासन समन्वितम, वो आपको ये मत्स्य पुराण में प्राप्त हुआ। और अष्टादश सहस्राणि पुराणानां तत्प्रकीर्तितम, ये अष्टादश पुराण है, अष्टादश सहस्राणाम 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 335 चैप्टर्स इसका एड्रेस है। भागवत है क्या, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। और मुख्यतः उसके अंदर क्या प्राप्त होता है, वित्रासुर का प्रसंग प्राप्त होता है, और साथ साथ में और क्या प्राप्त होता है, उसके अंदर ब्रह्म विद्या नारायण कवच प्राप्त होता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो भागवत में प्राप्त होता है, अन्य पुराणों में खाली उल्लेखन प्राप्त होता है, उसका पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता है। इससे कहा गया है पौष्टपद्याम यानी भाद्र मास का जो पूर्णिमा है उस दिन जो भागवत को प्रदान करता है याति पराम गतिम, इसलिए अम्बरीश महाराज को शिक्षा दिया गया है। यत्राधिक्या गायत्रीं वर्णयते धर्म विस्तरे वृत्तासुरोदोपेतं तद्भागवतमिष्यते, जो वृत्तासुर का वर्ग के साथ में है उसको श्रीमद् भागवत कहा गया है। आगे श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने तत्व संदर्भों में इसका और आगे वर्णन करते हैं। ग्रंथोष्टादशस्त्रो द्वादश स्कंद समन्वितः हय ग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्तासुर वदत्तता गायत्र्या च समारंभा तद्वै भागवतम विदुः, उसको भागवत कहा गया जो गायत्री से शुरू होता है। आगे उसी प्रकार का श्लोक अन्य पुराणों में आता है, पुराणानां तं भगवतीं पठते पुरतो हरेर, खास करके भागवत को कहां पढ़ना चाहिए, पुरतो हरेर, हरि का पुर मतलब मंदिर में, मंदिर में भगवान के सामने भागवत को रोज पढ़ना चाहिए। चरित्रम दैत्यराज प्रहलादस्य च भूपते, जिसके अंदर प्रहलाद का चरित्र है उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये भगवान के कृष्ण के अनेकों अनेक उपचार है, षोडश उपचार आप सुने हैं और 64 उपचार तो फेस्टिवल के दिन किया जाता है, लेकिन उन सारे उपचारों में सबसे महत्वपूर्ण उपचार है भगवान के सामने विग्रह के, श्री विग्रह के सामने उनकी स्तुति, उनको गुणों को गान करना, यानी भागवत को सुनाना। प्राय हम लोग सोचते हैं कि पुजारी है, पुजारी डिपार्टमेंट है, हा? जो भोग बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, ये पुजारी है। नहीं, भागवत कक्षा में जो सब बैठे वक्ता हो श्रोता हो उसका आयोजन करने वो भी पुजारी है। क्यों? क्योंकि भागवत हम समर्पित कर रहे हैं किनको? विग्रह को समर्पित, इट्स एन ऑफरिंग टू कृष्णा। जैसे भोग लगाना 12:30 बजे भोग लगता है, राजभोग लगता है, उसी प्रकार 8 बजे भगवान का और एक भोग लगता है, क्या है वो? भागवत। भागवत भी भगवान का भोग है। भोग लगने के समय भगवान का, उस समय भगवान का गुणगान होना चाहिए। इस बात को इधर पद्म पुराण के उत्तरकांड में बात कहा गया है, चरित्रम दैतराजस्य बलि महाराज का चरित्र, प्रहलादस्य च भूपते तत्रैव वेंजुली महात्म्ये तस्य तस्मिन् उपदेशतः। इसलिए विग्रह के सामने मुख्यतः रात्रौ तु जागर कार्या श्रोतव्या वैष्णवी कथा, कोई कोई ऐसा पर्व होना चाहिए रात भर जो है आप उसको भागवत को श्रवण करना चाहिए। गीतानाम सहस्त्रम च पुराणानाम सुखभाषितम, सुखभाषितम जो सुखदेव गोस्वामी ने जिन श्लोकों को उच्चारण किया उन श्लोकों को भगवान की प्रसन्नता के लिए रोज अहर्निश गान करना चाहिए। अम्बरीश सुख प्रोत्तम नित्यम भागवतम श्रुणु, ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अन्य पुराणों की कथन है, पुराणों में भी भागवत की महिमा का गान हुआ है। अम्बरीश सुख प्रोत्तम नित्यम भागवतम श्रुणु पटस्वा स्व मुखे नापि यदिच्छसी भवक्षयम्, अगर उसको पठन करोगे खास करके हरि मंदिर के हरि के सामने तो क्या होगा, यदिच्छसी भवक्षयम्, भवक्षयम् संसार से मुक्त हो जाता है। स्कांदे प्रहलाद समन्वितम द्वारका महात्म्य, स्कंद पुराण में भारत का महात्म्य कहा गया, क्या कहा गया है, श्री भागवतम भक्त्या पठते हरि सन्निधो, बार बार आता हरि सन्निधो हरि सन्निधो, हरि सन्निधो मतलब हरि के सन्निधि में गान करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में जहां गान होता है हरि का सन्निधि होता है। जागरे तत्पदम याति कुलवृंद समन्वितः, कुलवृंद समन्वितः। तो बोलोगे प्रभु जी मेरे भाई बहन बंधु उनका क्या होगा, मैं तो श्रवण करता हूं। तो स्कंद पुराण का जो द्वारका महात्म्य के भाग में बात कहा गया है, जागरे तत्पदम याति, कौन कौन जाता है भगवत धाम, कुलवृंद समन्वितः, उनके परिवार वालों के साथ जो है याति भगवत धाम जाता है। ये विशेषता है भागवत का, खाली अकेला नहीं, जो भी आपके परिवार वाले हैं वो सब कुछ जाते हैं। इसलिए सच में आप किसी से प्रेम करते हो इस संसार में, उनको भागवत दो, उनको भागवत सुनाओ। भागवत देना जो है तीन प्रकार का होता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात आती है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार का है। पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उस बुक में, ग्रंथ में, भागवत में फर्स्ट पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट, क्यों, सबसे प्रिय आपके लिए संसार में कौन है, खुद, पहले खुद डिस्ट्रीब्यूट योरसेल्फ, पढ़ो। दूसरा, जो रुचि रखते हैं भागवत में, 8-10 लोग आपके परिवार में हो, आजू बाजू में हो, यहां ब्रह्मचर्य आश्रम कहीं भी हो, 5-6 लोग हो, एक हो, दो हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, उनको उस पुस्तक में जो ज्ञान है भागवत का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी उसको पठन करो, आख्यान करके बोलो। और तीसरा प्रकार का बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो ग्रंथ जो है अलग अलग लोगों को वितरण करो। खास करके भाद्र पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने सुंदर आयोजन किया है, भागवत कथा का आयोजन किया है, जिसमें इस प्रकार का भागवत की महिमा को गान करने की जो मुझे सेवा दी गई है, अगर उसका कुछ प्रयोजन है, प्रयोजन ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति संकल्प ले, क्योंकि आज आखिरी दिन है, संकल्प ले कि किसी ना किसी तरीके से एक घर को मंदिर बनाऊंगा। हमारा सिद्धांत यही है, सबको प्रचार करना, मंदिर को अपना घर बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। घर जो है मंदिर कैसे बनेगा, भगवान की उपस्थिति से। सबसे आसान काम है भगवान को प्रतिष्ठा करना, सीधा जाके भागवत उनके घर में रख दो, बस। ये कहीं मैं सुन रहा था कि आप पहले से बोलोगे कि आप ग्रंथ आपके हाथ में, इसका है लीजिए, इतना है इसका है, इसके अंदर ये है, नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक में एक बार बहुत साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया, तो उसमें क्या किया, उसमें एक बात बहुत सुंदर अच्छा लगा मुझे अभी तक। तो उन्होंने कहा, कौन ले रहा था मुझे याद नहीं है, सबसे पहला कोई मिलता है ना, बुक जो है पास में हाथ में दे दो, पहले बाद में बात करो, अपने हाथ में ग्रंथ रख के बात मत करो, पहले क्या करो उसके हाथ में थोप दो। ये जी को स्वभाव रहता है, क्या रहता है मालूम है, लेना लेना जो है जीव का स्वभाव है, देना जीव का स्वभाव नहीं रहता, लेना जो है जीव का स्वभाव है, बद्ध जीव का। आप किसी को कुछ भी दोगे तुरंत लेता है कि नहीं, दे दो उसके हाथ में दे दो, वो ले लेगा, लेने के बाद बात करो, बाकी जितना ही बात कर रहे हैं बात करो, दे दो पहले, बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं। ये आप दे दो आज, किसी ना किसी तरीके से एक घर में दे दो, एक के हाथ में दे दो, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, खास करके भागवत की प्रतिष्ठा दूसरे घर में तभी हो सकता है जब उसके ऊपर विश्वास हो। विश्वास कब जागृत होगा, जब उसको पठन करेंगे। आज के दिन तो हम बहुत सारे लोगों के घर में भागवत की प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन अगले साल तक क्या करेंगे, क्या उसको रोज उस रस का आस्वादन करो। डिस्ट्रीब्यूट टू योर सेल्फ, रोज उसको पढ़ो, कम से कम एक श्लोक को तो पढ़ो, एक श्लोक को तो आस्वादन करो। मैं पढ़ो करके बोलता नहीं, भागवत की जब बात आती है पढ़ने की बात नहीं करता हूं, आस्वादन करने की बात, रिलिश भागवतम रोज। और जो आपने जो आस्वादन किया, वो दूसरे 8-10 लोग जो भी 10-15-20-25 और एक भी आपका बच्चा ही मिलता है, पति हो पत्नी हो, किसी को सुनाओ। क्योंकि जब तक आप सुनाओगे नहीं, तब तक उसका आस्वादन नहीं हो पाएगा। जहां जहां मौत को मिलता है पढ़ो, आस्वादन करो, आस्वादन कराओ, और उसे शक्ति प्राप्त करके लाखों अनेकों इस प्रकार के जो ग्रंथ है, भागवत है, वो घर में स्थापना करो। इससे बढ़कर इस संसार में कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। तो दो दिन पहले प्रभु जी जब यहाँ पर कथा कर रहे थे अनंत चतुर्दशी के दिन, उस समय उन्होंने बोला कि जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण के लिए पागल होना। तो ऐसे कृष्ण भगवान जो भागवत स्वरूप है, उनके लिए हमारे प्रिय कथा वक्ता कथा व्यास श्रीमान कमल लोचन प्रभु जी कितने पागल है हम देख रहे पिछले हफ्ता भर से। तो ऐसे व्यक्ति के संग में रह के हम भी भगवान कृष्ण के लिए पागल हो सकते हैं, तो इनका हम धन्यवाद देंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी समय सारणी पूरी व्यस्त होने के बावजूद कई कई दूर दूर अंतरों से दिन भर घूम के शाम को कथा करने के लिए आते थे वो। तो ऐसे कृपा हम सारे रसिक श्रोताओं के ऊपर किया, इसलिए उनका हम धन्यवाद देंगे जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
मैं पुनश्च एक बार श्रीमान भीमा प्रभु, देवकी नंदन प्रभु और ब्रजहरी प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकल्प को मार्गदर्शन किया, और सारे भक्तों का जिनको जिनको ये जो प्रचारकों को उद्देश्य दिए थे, उद्दिष्ट लक्ष्य दिए थे, जिन्होंने श्रीमान ब्रजहरी प्रभु के मार्गदर्शन में ये लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया है, उन सारे प्रचारकों का जिन्होंने एक से लेकर के ज्यादा से ज्यादा भागवतम संच वितरित किए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाकी सब भक्तों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया है सेवा, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और एक व्यक्ति का कल विशेष रह गया था, वो यूट्यूब का जो प्रमोशन कर रहे हैं, जो उसका विज्ञापन कर रहे हैं, जाहिरात कर रहे हैं, और जो घर बैठे हैं पूरी दुनिया भर में लोगों के लिए हमारा कथा प्रसारण कर रहे हैं, दुधामृत प्रभु बहुत परिश्रम किया है उन्होंने उसको लोगों के पास ये हरी कथा की दूध गंगा पहुंचाने के लिए, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। कल रात को जो भागवत कथा का प्रसाद वितरित हो रहा था तो मुझे लगा कि लड्डू प्रसाद वितरित होना चाहिए था, लेकिन कोई संभावना नहीं थी। आज सुबह अभी अभी कथा चालू हो गई और एक व्यक्ति अजनबी आया, बोले मैं लड्डू बांटना चाहता हूँ, सबको बांटना है। बोले ठीक है दीजिए। तो उन्होंने कुछ राशि दान कर दी। मैंने बोला आपका नाम क्या है? बोले गुमनाम, ये भगवान राजबिहारी ने भेजा है सब भक्तों के लिए। तो आप सभी भक्तों के लिए अभी आरती होगी, आरती के उपरांत प्रसाद चालू होगा वृंदावन हॉल में, और जिन भक्तों को भागवतम लेना है लेकर के भगवान को अर्पण कर सकते हैं, सिंहासन पर रख सकते हैं और उसके उपरांत प्रसाद ले सकते हैं, नहीं तो पहले प्रसाद लीजिए और बाद में भागवत लीजिए, दोनों सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। तो भागवत प्राप्त करने के आज की विधि ऐसी है, जो भक्तों ने पहले ही लक्ष्मी दर्ज की है और जिनके पास रसीद है TR रिसीट, वो लोग अपना अपना TR रिसीट जो है वो यहाँ पर लेके आए कतार में, सब लोग एक साथ आकर के वहां पर झड़प मत डालिए। अकेले ब्रह्मचारी बैठे उधर हमारे कमल नारायण गौर प्रभु, कमल नारायण गौर प्रभु, तो एक लाइन से आइए, एक कतार में आइए धीरे धीरे, और अपना रसीद दिखाइए, वो उसके ऊपर छाप लगाएंगे और आप भागवतम उठा करके आपको दिया जाएगा, भगवान के सिंहासन पर रखा जाएगा, वहां से लेकर के आपको मदद किया जाएगा, आपके गाड़ी में जहां पर रखना है वहां पर रख देंगे। तो धीरे धीरे एक कतार में आइए अपना रसीद बुक लेकर के। अगर किसी ने पहले लक्ष्मी नहीं दी है और आज लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन है कि यहाँ पर रागानुगा हरि प्रभु और हरी आहुजा प्रभु जी का स्टॉल है, वहां पर वो भागवतम लेके बैठे हैं, आप अगर आज भी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतनी श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण किए, और बाकी सब लोगों का भी मैं धन्यवाद चाहता हूँ। अभी आरती होगी श्रीमद् भागवतम की, सभी से अनुरोध है कि आरती के लिए हम अपने अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं, और पूरी आरती होने के बाद भागवत वितरण चालू होगा और प्रसाद ही साथ साथ चालू होगा वृंदावन हॉल में। धन्यवाद हरे कृष्ण। मैं श्रीमान भीमा प्रभु को निवेदन करता हूं कि वो आगे आए, अभी वो कीर्तन करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम की प्रसन्नता के लिए, और श्रीमान ब्रजहरी प्रभु अभी आरती करेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।